अभी हम सनातन गोस्वामी का जीवनी, ये सनातन गोस्वामी का मंदिर है, राधा मदन मोहन मंदिर। हमारे उज्जैन का मंदिर का नाम गुरु महाराज रखा है मदन मोहन मंदिर, तो यह मदन मोहन मंदिर है, तो ये विशेष महत्वपूर्ण है। वो गौड़िया वैष्णव का तीन विग्रह है श्रेष्ठ है, एक मदन मोहन, एक गोविंद श्री राधा मदन मोहन, एक है गोविंद और है गोपीनाथ। तो सनातन गोस्वामी का जीवन चरित हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सनातन और रूप गोस्वामी का छोटा भाई अनुपम, उनके छोटे उनका जो लड़का है जीव गोस्वामी, उन्होंने उनका वंश परिचय प्रदान किया है। उनका वंश है कर्नाटक देश में, देश का जो अधिपति है भरद्वाज गोत्रीय यजुर्वेद ब्राह्मण श्री सर्व जगत गुरु, उनका पुत्र का नाम था अनिरुद्ध देव। अनिरुद्ध देव का दो पत्नी थी, उनका दो पुत्र थे, एक श्री रूपेश्वर और एक नाम है श्री हरिहर देव। श्री रूपेश्वर देव शास्त्र में बहुत दक्ष थे और श्री हरिदेव युद्ध शास्त्र विद्या शास्त्र में बहुत दक्ष थे। तो हरिदेव श्री रूपेश्वर देव का जो राज्य है उन्होंने जोरपूर्वक दखल किया, तब रूपेश्वर देव 8 अश्व घोड़े लेके पत्नी को लेकर पूर्वस्थ देश गमन करे, और वो देश का जो अधिपति है श्री शेखरेश्वर, उनके साथ उनका मित्रता हो गया। श्री रूपेश्वर देव का पुत्र का नाम श्री पद्मनाभ देव। पद्मनाभ देव वेद शास्त्र पंडित थे, उन्होंने पद्मनाभ देव बांग्ला की बांग्ला पश्चिम बंगाल में नईहाटी गंगा नदी के तट, एक नईहाटी करके एक जगह है, वहाँ आके उन्होंने बसत स्थापन कर लिया। उनका 8 कन्या और 5 पुत्र थे, सारे पुत्र शास्त्र में बहुत दक्ष थे। उनका पुत्र का नाम है, 5 पुत्र का नाम है पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद देव। मुकुंद देव उनका रिश्तेदार के द्वारा उन्होंने वितरित फैस्टेटेड हो गया, वह तब उन्होंने वह छोड़ के बाकला चंद्रदीप एक जगह है बांग्लादेश में है, यह पश्चिम बांग्ला छोड़ के आज ये बांग्लादेश है, जशोर जिला है वहाँ पे, वहाँ उसका नाम पहले नाम था बाकला चंद्रदीप, जशोर अभी उनका नाम जशोर जिला बांग्लादेश में, उसी टाइम नाम था बाकला चंद्रदीप। तो वहाँ जाके मुकुंद देव वहाँ जाके गृह निर्माण किया और जशोर फतेहाबाद ये दो जगह उन्होंने पौरोहित्य करते थे। मुकुंद देव का पुत्र का नाम कुमार देव। कुमार देव का बहुत सारे संतान थे, उन संतान बीच में 3 संतान श्रेष्ठ है, एक श्री सनातन, एक रूप और उनका छोटे भाई अनुपम वल्लभ, जो वल्लभ का लड़का का नाम जीव गोस्वामी। सनातन गोस्वामी का जन्म है 1488 शताब्द। श्री गोस्वामी सॉरी ख्रीष्टाब्द 1888 शताब्द 1410। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब? 1486। और सनातन गोस्वामी का 1400 अष्टाशी, अष्टाशी हिंदी में क्या अष्ट क्या बताया, अठासी, अठासी दो साल छोटा है सनातन गोस्वामी। और रूप गोस्वामी का जन्म है 1493 ठीक है, 93 इन्होंने पश्चिम बांग्ला, अभी जो पश्चिम बांग्ला है उसी टाइम उनका नाम था गौर। गौर का निकट में शाकुरमा नामक एक पल्ली में उन्होंने मामा का घर में पढ़ाई करते थे। गौर का जो राजा है, गौर का राजा हुसैन शाह, तो गौर का जो बादशाह उसने हुसैन शाह, उन्होंने सुना एक बहुत ही बड़ा पंडित है रूप और सनातन, तो उन्होंने बादशाह बहुत संपत्ति देख के उनको, यदि वो उनका मुसलमान मुसलमान एक जवान राजा को नौकरी करने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन उसी टाइम गौर का राजधानी का नाम था रामकेली, अभी वो डिस्ट्रिक्ट है, वो जिला का नाम है मालदा जिला, लेकिन आज से 500 साल पहले उनका नाम था रामकेली ग्राम। देश विदेश के बहुत बड़े बड़े पंडित उनका घर में आके पढ़ाई करते थे, इतना शास्त्र में इतना पंडित थे उन्होंने। रूप सनातन का जो अध्यापक उनका नाम था श्री विद्याभूषण पाद, और दर्शन शास्त्र का गुरु था नवद्वीप में सार्वभौमों का भ्राता विद्यावाचस्पति। आप सार्वभौमों का नाम सुना जगन्नाथपुरी में, एक्चुअली सार्वभौमों का घर था मायापुर में, मायापुर में नवद्वीप में था, तो उनका जो भाई है विद्यावाचस्पति, उन्होंने नवद्वीप में रुक गया, लेकिन उनका मालूम था ताकि महापुर बाद में सुन्यास लेकर वहाँ लीला विलास करेंगे, इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य नवद्वीप सर के जगन्नाथपुरी में चला गया। तो सार्वभौम भाई भट्टाचार्य का भाई भ्राता विद्या वाचस्पति था सनातन गोस्वामी का दर्शन शास्त्र का गुरु। सनातन गोस्वामी बहुत जब छोटे थे, एक दिन उन्हें सपन में देखा एक ब्राह्मण आके उनको एक भागवत प्रदान किया, सपन में देखा एक ब्राह्मण आके उनको एक भागवत दान किया, वो भागवत मिलकर उन्हें इतना आनंद हो गया, बहुत आनंद, और उनका सपन टूट गया। और जब नींद टूट गया तब किसी को नहीं देखा, किसने देखे गया, तब मन में बहुत दुख हुआ, अरे कौन देखे गया, अभी उनको मिलता था कितना अच्छा होता था। तो सुबह उन्होंने स्नान करके पूजा समाप्त कर लिया, एक उसी टाइम देखा एक ब्राह्मण हाथ में एक भागवत लेके आया, और उन्होंने बोला ये भागवत आप रखो और आप ये पढ़ना, ये केवल पढ़ने से आपको सारे सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। और ये बात बोल के ब्राह्मण वो भागवत देके चला गया, और भागवत प्राप्त होने के बाद सनातन गोस्वामी का बहुत आनंद हुआ। सनातन गोस्वामी लिखा मेरा एकमात्र संगी, एकमात्र बंधु, गुरु, महाधान, मेरा भाग्य स्वरूप, मेरा आनंद स्वरूप, मेरा भागवत, मैं तुमको नमस्कार कर रहा हूँ। इस तरह ने भागवत को उन्होंने प्रणाम किया। जब उन्होंने सुना चैतन्य महाप्रभु कलियुग में कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के प्रकट हो गया, तो उनके तो बहुत आनंद है, लेकिन जब सुना उन्होंने छोड़ने से लेकर जगन्नाथपुर चला गया, उन्होंने प्राय उन्होंने बहुत कष्ट हुआ। हाँ, वो बेहोश हो गया, वो उनका लग रहा है ये जीवन रखने का क्या फायदा है, हाँ भगवान ये भूमि में आया है उनको दर्शन नहीं कर पाया, उन्होंने चला गया। तो उन्होंने जब बेहोश हो गया तब एक उनका एक दैव वाणी हो गया, उन्होंने बोला तुम शोक करो मत, करुणामय गौरांग महाप्रभु गौरहरी तुरंत आएगा तुम साथ मिलने के लिए। ये बात सुनकर उनको थोड़ा मन में स्वस्ति ठीक है, स्वस्ति
संतुष्टि
थोड़ा लिटिल सेटिस्फेक्शन, ओके स्वस्ति आया। चैतन्य महाप्रभु इधर में जब वृंदावन जगन्नाथपुरी में है, वृंदावन दर्शन करने के लिए उन्होंने जाएंगे, तो उन्होंने सोचा बंगाल होके जाएंगे, मेरा माता को दर्शन हो जाएगा और गंगा माता को दर्शन हो जाएगा, नवबुद्धिबाजी भक्त को मिलेंगे। लेकिन मुख्य तो कारण था रूपा सनातन के साथ मिलने का, भगवान अंतर्जामी मालूम है। महाप्रभु रामकली ग्राम में आ गया और आने से सब लोग बहुत खुश है, चारों तरफ से बहुत आदमी आए देखने के लिए। तो बादशाह सुना जी एक सन्यासी भिखारी है, लेकिन बहुत सारे आदमी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, मैं राजा है मेरा पीछे पीछे कोई नहीं आता है, इतना रुपया देता हूँ फिर भी नहीं आता है, मिसिल मीटिंग करने रुपया देके ट्रक वगैरह भर्ती करके रुपया आना पड़े, आदमी लाना पड़ेगा मेरा मीटिंग में कैटर वगैरह, लेकिन ये आदमी सन्यासी भिखारी है किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन इनके पीछे पीछे इतना आदमी क्यों भाग रहा है। बिना दाने आतो लोग जार पाछे जाय सही तो गोसाई यहा जानियो निश्चय। उसके पहले जहा नित्य करे प्रभु प्रेमी अचेतन कुटी कुटी लोकाई से देखिते चरण, करोड़ करोड़ लोग आ रहा है देखने के लिए महाप्रभु प्रेमी अचेतन। तो महाप्रभु आया गांव में, जो सनातन भी मंत्री है उस तरह तो आम जनता की तरह उनको तो मिल नहीं सकते, मिल भी सकते भी राजा देखेगा देखो हमारे अर्थ वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री वहाँ गया है क्या हो रहा है। तो इसलिए जब शाम हो गया तब रूप सनातन दो भाई महापुरुष से मिलने के लिए गया और साथ में दांत में तीन पकड़कर उन्होंने दो भाई जाके दंडवत प्रणाम किया और दो भाई को देख के महाप्रभु उनको समझ लिया और महाप्रभु समझ गया ये कौन है। तो महाप्रभु उनके प्रेम से आलिंगन किया और उनको बोला तुम दोनों भाई मेरा जन्म जन्मांतर मेरा दास है और मैं रामकेले में आया केवल तुम लोग को उद्धार करने के लिए। और जब राजा का मुसलमान राजा का नौकरी करते तो उनका नाम ही मुसलमान बन गया, दबीर खान से शाकर मल्लिक ये दो नाम दिया। तो महाप्रभु बोला आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप। उसी टाइम महाप्रभु साथ अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीवास बहुत सारे भक्त थे, सारे भक्त रूप सनातन को बहुत आशीर्वाद किया। उसके बाद सनातन का छोटे भाई अनुपम का भ्राता छोटे भाई अनुपम का संतान का नाम जी भैया, तो बहुत छोटे बच्चा था वो भी चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु वंदना किया। तब वो छोटा बच्चा था जीव, महाप्रभु जीव गोस्वामी सर पे चरण रख दिया और चरण में रख दिया, उन्होंने आशीर्वाद किया भविष्य में तुम वैष्णव समाज का श्रेष्ठ आचार्य बन जाओगे। और गौरहरी
तो जगन्नाथपुरी जाता वृंदावन नहीं जाके फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी लौट गया और जाने के पहले उन्होंने आशीर्वाद किया तुरंत तुम दोनों भाई का संसार बंधन छूट जाएगा। एक्चुअली सनातन गोस्वामी का पूर्व नाम था अमर और रूप गोस्वामी का नाम था संतोष और अनुपम का नाम था बल्लभ। सनातन गोस्वामी नाम था अमर और रूप गोस्वामी का नाम था संतोष, लेकिन उन्होंने मुसलमान सम्राट उनके ठाकुर मल्लिक और दबीर खास तेरा नाम दिया था। जब महापुर चला गया तब उन्होंने दो भाई प्लान करना शुरू किया कैसे यहाँ से छुटकारा मिले। तब उन्होंने सारे परिवार परिजन को बकला चंद्रदीप जो आज बांग्लादेश में रामकेली या जशोर जिला है वह भेज दिया। और उसी टाइम रुपये इतना वित्त मंत्री था इतना संपद था दो नाव भर के स्वर्ण मुद्रा भेज दिया था इतना धन था। और रूप सनातन कुछ आदमी को नियुक्त किया था महापुर फिर कब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाएंगे वो खबर मुझको बताना। तो आदमी को खबर मिला हाँ महापुर अभी जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहा है। ये कथा सुनकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने रूप गोस्वामी अनुपम को साथ में लेके महाप्रभु के साथ मिलने के चले गए। चलते चलते उन्होंने प्रयाग इलाहाबाद में प्रयाग में आ गया। प्रयाग के महाप्रभु दर्शन कर बहुत भीड़ है। संध्या काल में गंगाधर के प्रभु दर्शन करने के लिए दो भाई कौन दो भाई रूप और अनुपम दंडवत प्रणाम किया। प्रभु देख के उनको तुरंत पहचान लिया उनको उठा के आलिंगन किया। उन्होंने सनातन गोस्वामी का और अलग सबके बारे पूछा सनातन किस तरह है क्यों नहीं आया कब आएंगे महापुर तो सब मालूम है फिर भी पूछ रहे हैं। तो महाप्रभु मृदु हंसी देके बोला तुरंत सनातन का बंधन मुक्त होगा। उसे सुना सनातन का जब रूप गोस्वामी धर्म आ गया तब वह बादशाह का पता चल गया ये भी भाग जाएगा तो उसको जेल में बंदी कर दे तुम दोनों भाई जाओगे तो मेरा राज्य चलेगा किसी दोनों एक साथ रेजिग्नेशन दोगे तो महाप्रभु बोला नहीं तुरंत सनातन का बंधन मुक्ति हो जाएगा। और वहाँ पे त्रिवेणी में महाप्रभु रूप गोस्वामी और अनुपम को 10 दिन वहाँ शिक्षा दिया। वो 10 दिन में जो शिक्षा प्राप्त की रूप गोस्वामी वहाँ से इतना विशाल ग्रंथ लगा रूप गोस्वामी कितना सारे पुस्तक लगे हैं उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु लघु भगवतामृत बहुत सारे ललित माधव विदग्ध माधव बहुत सारे पुस्तक। उसी टाइम श्री वल्लभाचार्य त्रिवेणी पर आया त्रिवेणी इलाहाबाद के त्रिवेणी के पार में एक गांव है गांव का नाम आराइल। वो गांव में वल्लभाचार्य वास करते थे। वल्लभाचार्य कौन है पुष्टि मार्ग के जो आचार्य है उनको आचार्य सब उन लोग को आचार्य महापुरुष बोलते हैं उन लोग को भक्त लोग। वो जो वल्लभाचार्य है उन्होंने गंगा के तट उधर में अराइल गांव वास करते थे। एक दिन उन्होंने प्रभु को घर में उनका आमंत्रण किया। प्रभु के साथ रूप अनुपम वल्लभाचार्य के कक्ष में फिर भी परिचय करिए दिल्ली बोले दादा। जब चैतन्य महाप्रभु बल्लभ राज्य पहचान करते ये है रूप ये अनुपम है, तो बल्लभ राज्य ने उनको आलिंगन करने के लिए गया। हाँ तुम इतना बड़ा भक्त है, तो रूप गोस्वामी इतना दिन है उन्होंने पीछे भाग गया, नहीं मैं बहुत नीचे आदमी हूँ मैं आलिंगन नहीं करना चाहिए। उसको देख के बल्लभ राज्य बहुत खुश हो गए। तो महाप्रभु उनको बोला इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। महाप्रभु बल्लभ राज्य को धोखा देने के लिए बोला ये इन लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो उत्तर बल्लभ राज्य ने बोला बल्लभ राज्य ने अधम नहीं है, ये सर्वोत्तम है ये दोनों भाई क्योंकि इन्होंने मुंह में हमेशा कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहा है। तब दो भाई ने बल्लभाचार्य को दंडवत प्रणाम किया और बल्लभाचार्य उन्हें आलिंगन किया और उन्हें बहुत प्रशंसा करने लगा। उसके बाद महाप्रभु त्रिवेणी में जब आ वहाँ से बहुत भीड़ है, इसलिए भीड़ देकर उन्होंने गंगा के घाट में हुआ, एक घाट है उसका नाम दशाश्वमेध घाट, वह आया। वह रूप गोस्वामी को उन्होंने 10 दिन भक्ति का तत्व प्रदान किया। प्रभु का ये सुनो रूप भक्ति रसर लक्षण सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाय वर्णन परापार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तुम्हारे चखाइते तार कही एक बिंदु। हे रूप भक्ति जो रस है ये समुद्र के समान है, इसको पूरा पिलाना मुश्किल है, लेकिन उसको टेस्ट कराने के लिए तुमको मैं एक बूंद पिलाऊंगा। तो इस तरह उन्होंने दिया। जिस तरह रूप गोस्वामी के साथ जो वर्णन है हम दूसरा दिन वर्णन करेंगे, आज सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु के दिल्ली वह अंश पाठ करेंगे। तो अभी जब रूप सनातन चला गया है तो सनातन गोस्वामी का हाल किया हुआ। तो रूप जाने के बाद सनातन गोस्वामी सोचने लगा, रूप और अनुपम जाने के बाद मैं कैसे जाऊंगा, और हसिंसा राज्य का सारे भार दायित्व रूप और सनातन को दिया था, और सनातन गोस्वामी राजधर में जाना बंद कर दिया और उन्होंने राजा को बोल दिया मेरा तबीयत ठीक नहीं है असुस्थ। तब हुसैन शाह उनको पास वैद्य भेज दिया, जाओ देखो कितना बीमारी है उनको, बीमारी ठीक नहीं है तो मेरा राज्य कैसे चलेगा। बौद्ध आया, बौद्ध देखा सनातन गोस्वामी 15-20 आदमी लेके भागवत चर्चा कर रहे हैं, बीमारी क्या है। राजबुद्ध सनातन का शरीर परीक्षा किया लेकिन कोई रोग उनका मिला नहीं, कोई बीमारी नहीं मिला। तो बादशाह का जाकर बोला उसके तो कोई बीमारी है नहीं। तो बादशाह नहीं समझा क्या हुआ सनातन ने, क्या मेरा भी नाराज किया है क्या हो। तो बादशाह खुद ले आया सनातन को, जब देखा बादशाह आया तब पंडितगण से उन्होंने उठ के राजा को उठने बैठने के उत्तम आसन दिया। तो राजा बोला बादशाह बोला वैद्य बोला है तुम्हारे कोई बीमारी नहीं है और सारे काम तो तुमको ले में कर रहा हूँ, और तुम सब से छोड़ के घर में बैठे तो कैसे चलेगा, तुम्हारा भाई चला गया मेरा सारे काम नष्ट हो रहा है, तुम्हारे के मतलब क्या है। सनातन बोले मेरे तरह नहीं यार होगा वो काम, आप भी दूसरा आदमी को ढूंढ लीजिए ये काम कराने के लिए। इनके बाद ये बात सुन के जवनराज हसन का बहुत क्रोधित हो गया। तो सनातन गोस्वामी बोला देखो आप तो राजा है, आपको क्षमता है, आप जो कुछ करना से कर सकते, मेरा जिस तरह आप सजा देना चाहते दे सकते। तो यह सुन के भजन से इतना क्रोध हो गया कि सनातन काजी को बोला इसको बंद करो, बंद करके कैद खाना रख। उसी समय बादशाह उड़ीसा देश जय करने के लिए, उड़ीसा आक्रमण करने के लिए गया। तो मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो सनातन गोस्वामी वाला नहीं, तुम साधु को भगवान को दुख देने के लिए तुम जा रहा हो, मैं तुम्हारे एक काम में मदद नहीं कर सकता। बच्चा उनको जेल कैद करने पर के उन्होंने उड़ीसा आक्रमण करने गया। उसी टाइम उन्होंने जेलखाना में एक रूप गोस्वामी का एक चिट्ठी मिला उनके पास, वो लिखा है किसी को हालत में तुम ये बंदी अवस्था से भाग के आ जाओ, मैं मोदी घर, मोदी घर मालूम है मोदी खाना ग्रोसरी शॉप हिंदी क्या है, स्टेशनरी दुकान पे हिंदी
स्टेशनरी
किराना, हाँ मैं किराना दुकान में जो मोदी खाना है वो बोलते हैं किराना दुकान में उसको बोलते हैं महाजन, जिसके पास रुपया वगैरह उसके पास 800 मोहर, मोहर अर्थात स्वर्ण मुद्रा, 800 सोना का मुद्रा में रखे हैं और मैं मेरे छोटे भाई अनुपम के लेके मैं वृंदावन जा रहा हूँ और आपके लिए मैं उनके पास 800 स्वर्ण मुद्रा रख के आया। तो चिट्ठी पढ़ के सनातन गोस्वामी मन में बहुत संतुष्ट है। उसके बाद सनातन जो जेल का जो सुपरिंटेंडेंट है, जेल सुपर है, उनको बोला तुम मेरा थोड़ा उपकार करो, तुम तो जिंदा पीर जैसे है, इतना बहुत अच्छा परहेजगार आदमी है। हाँ परहेजगार शब्द हिंदी में है, हाँ बहुत कृपालु आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, जिंदा पीर अर्थात पीर अर्थात पीर अर्थात जब ना गुरु है ना शब्द, तो उस तरह पीर पैगंबर नबी उनको बोलते हैं। जिंदा पीर मीन्स जिंदा अर्थात जिंदा तो जिंदा पीर अर्थात जीवित, जिंदा तो जीवित लगे, पीर तो है जो हजरत मोहम्मद पैगंबर पीर है, लेकिन तो है नहीं, लेकिन अभी लग रहा है तो मैं अभी एक उस तरह एक पीर है। इस तरह उनको बहुत प्रशंसा करने लगा। तुमका किताब शास्त्र कुरान शास्त्र बहुत ज्ञान है तुम्हारा, तुम सब मालूम है, लेकिन धर्म में विचार करके तो एक बंदी को मुक्त कर दोगे तुम्हारे कितना पुण्य मिलेगा। और ये एक पॉइंट दिया और भी बताया, देखो मैं पहले तुम्हारे कितना उपकार किया था, मैं एक समय पे प्राइम मिनिस्टर था, उसी दिन तुमको कितना उपकार किया था, कम से कम उसको तो यह देना चाहिए, पूर्ति उपकार करना चाहिए। और तीन नंबर आरक पॉइंट बताए, जब तुम यह करोगे मैं तुमको 5000, मैं तुमको 5000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो दो लोग देगा, एक पुण्य और अर्थ, और पुण्य हो जाएगा मृत्यु को तुम्हारे बेहस्त मिल जाएगा, और ये रुपया से ये जगत भौतिक सुख भी मिलेगा, दोनों ही लाभ है, क्यों नहीं सोचोगे। तो जेल जो सुपर है उन्होंने बोला हाँ मैं आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आजा जब सुनेगा आप बातें जब सुनेगा मुझे छोड़ दे तो मेरा हालत क्या होगा। तो सनातन बोला डरो मत, मुझको यदि छोड़ जाओगे मैं देश में नहीं रहूँगा और मैं दरवेश बांध में मक्का मदीना चला जाऊँगा। मैं तो ये देश में नहीं रहूंगा, मैं दरवेश बनूंगा, मक्का मदीना चला जाऊंगा। और बादशाह को तुम बोलो जो रात में वो टॉयलेट करने के लिए गया था, उसी टाइम गंगा में नहाने लगे, स्लिप करके गंगा में फिसल गया और वह गंगा माँ उनको लेके गया, गंगा प्राप्ति हो गया उनका। पापी आदमी जिस तरह उनके शक्ति होना चाहिए उसका हो गया। हाँ, ताकि मेरा बोलो जो उनका तो हाथ में लोहे का सिकल था, पेड़ में बेरी था, तो पानी के अंदर गिर गया और नहीं उठ सका, वह मर गया। और तुमको और 2000 एक्स्ट्रा दूंगा, 7000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। और 7000 स्वर्ण मुद्रे का बात सुन के जेल सुपर का थोड़ा लोभ हो गया। लोहे का सिकल काट के रात्रि में उन्हें गंगा पार कर दिया, सनातन मुक्त हो गया। सनातन गोस्वामी रासपत देख करके एक भित्त के साथ वन पद में पर्वत परिधि के उन्होंने एक वहाँ एक पहाड़ के अंदर आया, वो एक वन के अंदर एक डाकत का सरदार उनके घर में रुका। तो जो घर में रुका उसी का है, वो जंगल का रास्ता उनका मालूम नहीं, तो जंगल का रास्ता उनका 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 बोला था हम जंगल पार करा दो, बट ठीक है रात हो जाएगा पार करा देंगे। तो रात में बहुत सनातन गोस्वामी की सेवा करने के लिए अच्छा अच्छा खाना के लिए, तो सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री थे, उनको मालूम है अरे हमको इतना इतना करने का किया है, हमको बहुत प्रेम कर रहे हैं, तो बुद्धिमान आदमी है। तो उनके साथ जो नौकर था उनका पूछा जो तुम्हारे पास की कोई रुपया वगैरह है कि साथ में लेके आए, बोले है। तो कितना लेके आए, बोले मेरा पास 7 सोने का मुद्रा है। तो 7 सोने का मुद्रा है तो उसको मुझको दे दो। क्यों लेके आया, बोले आपके लिए लेके आया, आपको रास्ते में कोई लगेगा, बोले मुझको दे दो। तो 7 सोना मुद्रा लिया तो वो जो मालिक है उनके पास गया, बोले मेरा पास 7 सोने का मुद्रा है, आप लीजिए मुझको जल्दी ये पर्वत पार करा दीजिए। तो जो वो आदमी है उन्होंने बोला ये तो मेरा मालूम है, मेरे पास एक ज्योतिषी है, उन्होंने बोला आपके पास बहुत सारे संपदा है, तो मैं रात में मैं इस तरह करता था, तो ज्योतिषी बोलता है उसके पास है, उसको आदमी के मार के मैं रुपया लेता था। तो ज्योतिषी बोला ये दो आदमी के पास बहुत रुपया है, सोने का मुद्रा 7 मुद्रा है, तो मैं रात में आपको मार के मैं रुपया लेता था, ये मेरा प्लान था, लेकिन आपका जो ऑनेस्टी है, आपका जो सतर्कता है, ये देख के मेरा इतना अच्छा लगा, तो आपका साधु के पास इस तरह नहीं लेना चाहिए, मैं वो नहीं लूँगा, आप लेके चलोगे। तो सनातन गोस्वामी बोले नहीं आप लीजिए, बोले नहीं नहीं आपको मैं नहीं लूँगा। तो सनातन गोस्वामी बोले देखो आप यदि नहीं लेंगे मेरा पास रहेगा तो दूसरा कोई आदमी फिर इस तरह मुझको मारने का कोशिश करेगा, कम से कम आप लेके मुझको रक्षा कीजिए, कम से कम आप यह रख दिए, ताकि आप जब नहीं लेके मैं साथ में रखूंगा दूसरा जगह कोई आदमी मुझको इस तरह करेगा, तो कृपा करके रख दीजिए मुझको मुक्त कर दीजिए। तो 7 मुद्रा दिया। कुछ तो जाने के बाद सनातन गोस्वामी मन में थोड़ा डाउट है, उसके नौकर को पूछा अच्छा तुम्हारे पास क्या और कुछ है क्या। बोला हाँ और एक है। तो सनातन गोस्वामी बहुत गुस्सा हो गया, बोले एक काम करो, एक तो है वो लेके तुम भाग जाओ, लौट जाओ, मैं अकेला जाऊंगा, ताकि तुम साथ में इस तरह मृत्यु बाण साथ में लेके आ रहा हूँ। तो उनको देखे उन्होंने वहां से भागा दिया। उनका बोला सनातन गोस्वामी जो नौकर था उनका नाम ईशान को बोला तुम साथ में जम लेके घूम रहे हो,
उसके बाद यह आके हाजीपुर एक जगह है, सनातन गोस्वामी आके उनका जो भग्नीपति बहन है श्रीकांत तो उनका घर में रुका। उन्होंने यह आते थे राजा के लिए घोड़े खरीद करने के लिए। श्रीकांत तो सामने देखा कि उनका बागान में बागीचे में एक बैरागी बैठे हैं। वो जाके देखा ये सनातन गोस्वामी है। वो देखिए आश्चर्य हो गया। उसके बाद सनातन में सारे बात सुना तो श्रीकांत तो सनातन को घर लेके दो चार दिन वहाँ रख के रखने अनुरोध किया। तो श्रीकांत सनातन बोले नहीं तुम अभी मुझको गंगा पार कर दो, एक मुहूर्त में या वेट नहीं करना चाहता हूँ। और जब चले गए तो जरा तब श्रीकांत घर से उनका एक जो दामी एक कंबल है ब्लैंकेट इसको भोट कंबल कहते हैं वो भोट कंबल दिया। और गंगा पार सनातन गोस्वामी चलते पैदल में चलते कितना दिन बाद काशी में आगे पहुंच गया। और महाप्रभु पहले से काशी में है, ये बार हाँ जब वृंदावन जा रहा था तो काशी में है। उन्होंने चंद्रशेखर के घर में अवस्थान करते थे और तपन मिश्र के घर में प्रसाद भोजन करते थे। तो श्री सनातन गोस्वामी लोक मुख में सुना ताकि चैतन्य महापु चंद्रशेखर के घर में है, तो उन्होंने वहाँ गया। तो महाप्रभु तो अंतर्जन सब जानते हैं, तो चंद्रशेखर के बोला जाओ बाहर में देखो एक साधु है उनको लेके आओ। चंद्रशेखर गया देखा ना कोई तो है नहीं, फिर घूम के बोले नहीं कोई है नहीं आपको, बोले नहीं नहीं है एक कोई है नहीं, बोले नहीं एक नहीं है साधु एक दरवेश है, बोले नहीं वही दरवेश के लेके आओ। वहाँ पर कोई आदमी है क्या, बोले हाँ एक दरवेश है, तो बोले उनको लेके आओ। तो चंद्रशेखर दरवेश को बोला महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। और सनातन गोस्वामी ये बात सुन के बहुत आनंदित किया, आँखों में पानी आ गया, अश्रु आ गया। और देखा घर में जाके देखा महाप्रभु भक्त के साथ बैठे हैं। सनातन गोस्वामी साष्टांग प्रणाम के दंडवत प्रणाम किया, प्रभु उनको उठा के आलिंगन किया। लेकिन सनातन गोस्वामी बोला प्रभु मैं बहुत पापी आदमी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मुझका स्पर्श नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन महाप्रभु हाँ उनको जोर पूर्वक उनको आलिंगन किया। हाँ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं तुमको आलिंगन कर रहा हूँ मुझको पवित्र करने के लिए, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, तुम्हारे अंदर इतना भक्ति है तुम एक एक ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते। उसके बाद उन्हें सनातन के पास में बैठे यहाँ तो सारी बात सुना उनके पास। तो सनातन गोस्वामी का परिचय महाप्रभु ने तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य सबको महाप्रभु सनातन गोस्वामी का परिचय कर दिया। और सब सनातन गोस्वामी में आलिंगन किया। उसके बाद महाप्रभु बोला तुम अभी भद्रवेश ग्रहण करो, भद्रवेश भद्रवान अभी तो मुसलमान का देश है अभद्र था, जब गंगा में नहा के शेप वगैरह करके आ जाओ, अभद्र बाल लंबा लंबा बाल है अभद्र का ड्रेस है। अतपर भद्रवेश ग्रहण करने के लिए महापुर सनातन का आदेश दिया। श्री चंद्रशेखर गंगा में लेके नापित के द्वारा मुंडन करे शिखा धारण किया, स्नान कराया। तो महापुर का भद्रवेश करा, भद्र बनाओ अर्थात किया बाल निकल के शिखा रखो, इसका अर्थ क्या है, जिसके बाल है उसको अभद्र है। चंद्रशेखर उनको नया वस्त्र पहनने के लिए और बहिर्वास दिया, तुलसी माला, जादू संगे तिलक धारण और इस तरह भेज देख के सनातन गोस्वामी मन में बहुत आनंद है। और सनातन गोस्वामी यह देख देख के महापुरुष बहुत खुश है। हाँ, महापुरुष क्या खुश है, जो एक राज का प्रधानमंत्री थे, आज उनका परन में केवल एक कॉपी नारक बहिर्वास और कुछ नहीं, लेकिन लेकिन उनका तो बहुत गरीब आदमी है, लेकिन उनके शरीर में आरती के सामने बात करने नहीं देगा, हम सिर्फ प्रणाम करके बाकी लेस दूसरे जगह में करेंगे। सनातन गोस्वामी प्रपात की, जगत गुरु श्रील प्रपात की, सावेर गौर भक्त बिंद की, गौर प्रेमानंदी हरि हो।
कहाँ पे वन में कहा था,
शिफ्ट हो गया, भद्र हो गया।
तो उसके बाद उनका महाप्रभु उनका ये वैराग्य देख के बहुत प्रसन्न हुआ था, लेकिन उनके शरीर में बहुमूल्य कंबल ब्लैंकेट था, लेकिन महाप्रभु उनका बार बार देख रहा था, लेकिन सनातन गोस्वामी समझ गया महाप्रभु इतना खुश नहीं, ये ब्लैंकेट देख के इतना बैरेगी हो गया है, लेकिन इतना दामी कपड़ा ब्लैंकेट क्यों शरीर में, बोला नहीं, लेकिन महाप्रभु या सनातन गोस्वामी समझ गया महाप्रभु इतना खुश नहीं है मेरा ये दामी कपड़ा ब्लैंकेट। तक वो आने के पहले श्रीकांत उनका जो बहन है उन्होंने दिया था।
ये तो आक्रमण ज़्यादा ही होगा लग रहा है।
तो अगले दिन महाप्रभु सनातन गोस्वामी नदी के पार गया, नदी पार के जाके तो एक धोबी कापड़ा धरा है, तो वो गुदरी बोलते है क्या, कांथा, कांथा को क्या बोलते हैं, कथरी, कथरी क्या चीज,
कपड़े भरते हैं पुराने,
पुराना कपड़ा जो है ना, पुराना कपड़ा एक सिलाई करके
कथरी
ब्लैंकेट बनाते हैं,
कथरी
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 बांग्ला में काथा, पुराना काथा। तो वो धो रहा था, उनको जाके बोला भाई साहब यह लेके एक हम मेरा ये लेके आप, वो आपको उसके एक दीजिए। तो धोबी बोले आपको देख लो वो भद्र आदमी लग रहा है, लेकिन इस तरह जोकिंग क्यों कर रहा है। तो बोले नहीं जोकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं साज वाज बोल रहा हूँ, आप दीजिए मेरा जरूरत है। तो फिर महाप्रभु या सनातन गोस्वामी लेके तो जब लेके आया तो महाप्रभु उनको देख के बहुत संतुष्ट हुआ। ये सनातन गोस्वामी का बोल रहे, सनातन गोस्वामी बोल रहे बहुत आदर्श है। इसके बाद महाप्रभु सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी इस तरह आदेश देते हैं वृंदावन में जाओ। वृंदावन में जाके किया दो काम, एक है लुप्त तीर्थ उद्धार करना और शास्त्र प्रणयन। गोस्वामी का दो काम है, शास्त्र प्रणयन करना और लुप्त कृष्ण का जो लुप्त स्थान है उसको। तो आया कि कुछ दिन बाद सनातन गोस्वामी मन में हमें महाप्रभु को जगन्नाथपुर में दर्शन करने जाऊंगा। तो महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुर गया, लेकिन सनातन गोस्वामी जब गया तो उन्होंने सोचा आज रास्ता में मेन रास्ता में चलेंगे तो वहाँ जगन्नाथ का सेवक है, मेरा शरीर का जो छाया है वो छाया उनको शरीर में स्पर्श करेगा तो उन्हें अपवित्र हो जाएगा, तो फिर भगवान के चरण अपराध हो जाएगा, तो मेरा मेन रोड में नहीं चलना, तो अकेले समुद्र में जाना पड़ेगा नहाने के लिए, कोई चलना तो पड़ेगा। तो रास्ता नहीं, तो उन्होंने जो तप्त बालू का
तपी हुआ तपी हुआ जो रेती है उनको पुष्टि चलते थे, क्योंकि चलने उनका शरीर में पेट जल गया, शरीर में बहुत सारे क्या हिंदी क्या है
उसका खोले फोड़े
छाले फोड़े बहुत सारे था उसका, बांग्ला में कोंडू रसा वहाँ से बहुत सारे उजिंग रस निकलता था, पीक
तो
हिंदी हिंदी क्या है
पीप बोलते हैं,
हाँ पीप पीप हो गया तो बहुत शरीर बहुत क्या हो गया। महाप्रभु देख रहे, लेकिन महाप्रभु चाहते थे, लेकिन महाप्रभु कुछ ही टाइम में उनको उद्धार कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु हो सकता दूसरा कुछ लीला है, महाप्रभु तो इच्छा करके कुछ को नहीं, लेकिन वो बीमारी इलाज नहीं हो रहा है। लेकिन महाप्रभु क्या करते, सनातन गोस्वामी जब देखते थे उनको आलिंगन करते थे और उनका शरीर में जो पीप है महाप्रभु शरीर में लगता था, लेकिन सनातन गोस्वामी बहुत कष्ट लगता था, अरे मैं कितना अपवित्र आदमी हूँ और मेरा शरीर का उनका महाप्रभु शरीर में लगते थे देखने कितना, ये तो मेरा बहुत अपराध हो रहा है, तो यह नहीं रहना चाहिए, मेरा वृंदावन जाना चाहिए। तो जगदानंद पंडित के साथ उन्होंने सनातन गोस्वामी परामर्श किया, मेरा क्या करना चाहिए, तो मेरा यह रहने से तो मेरा महाप्रभु चरण में अपराध हो रहा है। तो जगदानंद ने उपदेश दिया, तुम्हारे वृंदावन जाने अच्छा है, ताकि यह ठीक है तुम सही समझ गया, ताकि यह अपराध रहा है। तो ये बात महाप्रभु कान में गया, जगदानंद पंडित को बहुत डांटा महाप्रभु, तुम दो दिन का जगा अरे सनातन को उपदेश दे रहा है, तुमको क्या मालूम है, हाँ तुम जग सबका इस तरह वैष्णव का सावधान है, सबको उपदेश नहीं देना चाहिए, हमारे अधिकार समझना चाहिए किसको हम उपदेश दे सकते हैं। जगदानंद सनातन को उपदेश देने महाप्रभु बहुत नाराज हो गए, तुम दो दिन का जगा और तुम सनातन को उपदेश दे रहे, सनातन एक 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 ब्रह्मांड उद्धार करने का क्षमता है उनका। तो सनातन का जो सुना, सनातन जो इस तरह महाप्रभु उनका बहुत डांटा है उनके लिए, तब सनातन गोस्वामी वाला महाप्रभु मैं आज समझ गया जगदानंद आपका कितना प्रिय है, मुझको मुझको प्रशंसा करके मुझको नीम का जूस पी ले रहे हो और इसको डांट के उनका स्वीट क्या आम्र मुकुल आम का जो मुकुल है कली है वो बहुत स्वादिष्ट है, गुलाब जामुन जिस तरह तुम उसका डांटा के डांट के इस तरह उसका प्रेम कर रहे हो और मुझको आप प्रशंसा करके नीम का जूस पिला रहे हो, तो जगदानंद आपका कितना प्रिय मैं आज समझ गया। तो इस तरह सनातन गोस्वामी जब बोला तो महाप्रभु बोले नहीं सनातन वो बात नहीं सच नहीं है, तुम मेरा बहुत प्रिय है, तुम जब ये शरीर मेरा प्रति आत्मसमर्पण किया है तब तुम्हारे शरीर तुम्हारे नहीं हो मेरा शरीर है, दीक्षा काले शिष्य काले आत्मसमर्पण सही काले गुरु तारे करे आत्मसमर्पण, दीक्षा काल में जब शिष्य आत्मसमर्पण करते हैं तब गुरु उनका आत्मसात कर लेता है, तब शिष्य का कोई और शरीर का प्रति और कोई अधिकार नहीं रहता है, आत्मसमर्पण करा आता है सब कुछ दे देना। तो दीक्षा काले में जब शिष्य गुरु के पास आत्मसमर्पण करते तब उनका शरीर उनका नहीं है तो गुरु का संपत्ति है, तो एक बार जब दान कर देता है वो वापस नहीं लेना चाहिए, दान करना चाहिए, वापस लेने तो पाप होता है, तो ये शरीर जब हम दीक्षा लेते आते हैं तो ये संपत्ति ये शरीर गुरु को अर्पण कर दिया, फिर वापस लेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी को बोला ये शरीर तुम्हारा नहीं है ये मेरा है और मेरा बहुत 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 बड़ा प्लान है, तुम्हारे शरीर देखे तुम्हारे मैं बहुत कुछ कराऊंगा इस शरीर के द्वारा, तुम्हारे जो शरीर का जो जो पीक मेरा शरीर में लग रहा है वो मेरा लिए मेरा बहुत संतुष्ट आता है, जिस तरह चंदन जिस तरह लग रहा है उस तरह लगता है मेरा शरीर मेरा बहुत पसंद आता है, तो वो तुम्हारे शरीर मेरा शरीर है, मेरा शरीर में जो तुम्हें पीक होता था मैं क्या करता था, वो मेरा शरीर है। इस तरह सनातन गोस्वामी को बहुत प्रशंसा किए और तो उसके बाद महाप्रभु के पथ पे सनातन गोस्वामी और ठीक हो गया। फिर भी महाप्रभु सनातन गोस्वामी सोचा मेरा तो नालायक आदमी के दुनिया में रहना क्या जरूरत है। ये शरीर से कुछ काम नहीं हो रहा है तो फालतू दुनिया में रहना क्या जरूरत है। केवल रहने के लिए पाप कर्म ज्यादा करने आए हैं। और उनके वजह है यदि मैं जगन्नाथ के रथ में चाका के नीचे आत्महत्या करूंगा तो ये बहुत बढ़िया है। इस शरीर में तो कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन जगन्नाथ जब रथ चलते हैं जगन्नाथ के रथ के नीचे हम गिर जाएंगे मृत्यु हो जाएगा भगवत धाम चला जाए कितना बढ़िया बात है। अच्छा है कंक्लूशन जीवन कितना बढ़िया। अभी तो ये दुनिया में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन मृत्यु के बाद हम कितना अच्छा कुछ कर सकते। तो बहुत अच्छा प्लान कर लिया। जब जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है सनातन गोस्वामी बहुत रेडी अभी गोलक वृंदावन चला जाएंगे। ये भौतिक जगत तो कुछ नहीं हो रहा है अभी जगन्नाथ के चाका के नीचे शरीर देके अभी भगवत धाम चले जाएंगे। मन में प्लान है अंतर्जामी महाप्रभु उनका मालूम है सनातन का प्लान मन में क्या प्लान चल रहा है। तो एक दिन सनातन को बोला सनातन वो डायरेक्टली बोला नहीं बोला आत्महत्या करने यदि भगवत प्राप्ति होता था तो क्या मालूम है मेरा दुनिया में रहना क्या जरूरत। मैं तो हजार हजार बार आत्महत्या करने के लिए तैयारी है। यदि कोई गारंटी देगा आत्महत्या करने के लिए भगवत प्राप्ति होगा तो मैं अभी तो आत्महत्या करने की तैयारी है। आत्महत्या करने के लिए आत्महत्या के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होते। तुम जाओ वृंदावन जाओ वृंदावन जाके कृष्ण का जो लुप्त तीर्थ उद्धार करो और जितना सारे गोस्वामी ग्रंथ है वह प्रणायन करो। ये सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी आया यहाँ पे उनके पास भगवान मदन मोहन रूप में प्रकट हुआ है लेकिन उन लोगों का काम है हमें 16 माला जाप करना। उसका मिनिमम जाप था 64 माला। मतलब 16 माला हमारे की हालत खराब हो जाता था तो 64 माला करने बाद किया उनका टाइमर कहा है। फिर उनके बाद और एक काम किया ग्रंथ लिखना। हाँ तो पढ़ने का ही टाइम नहीं उनको लिखना। हमको बोले पढ़ो पढ़ने के टाइम नहीं उनको लिखना। और लिखने के लिए क्या नहीं मेरा हम पिता माता मुझे कलम नहीं दे खाता नहीं दे मैं पढ़ाई नहीं करूँगा हम गुस्सा करते हैं। और उसी टाइम खाता कलम दें खुद में बनाना पड़ेगा। ताल का पत्ता काटने धूप में रखना सुखाना बाँस काट के कलम बनाना काली बनाना उसके बाद ताल पत्ता में लिखना सुखाना इस तरह इतना काम है। और सोलो इस तरह लिखना नहीं देख के लिखना नहीं मन में बना के शास्त्र पढ़ के वह निर्जय वो निचोड़ के उसके शास्त्र इतना कठिन काम है। वो काम भगवान का नाम जप करना प्रचार करना और फिर विग्रह विग्रह का पूजा करना आरुति करना भोग लगाना भोग बहाना इस तरह से दास दासी नकर नकने बहुत है करेंगे कोई नहीं है। खुद को फूल लाना हार बनाना माधुकरी करके आना खाना बनाना भोग लगाना आरुति करना एक आदमी के इतना करना पड़े कितना हालत खराब हो जाएगा। हमारे उज्जैन में 25 पुजारी है 25 ब्याका पे 3 जन आदमी है केवल बर्तन सफाई करने के लिए बर्तन सफाई करने इधर क्लीन वगैरह करे 3 आदमी है। किसी में रहना करते 5 आदमी है सनातन गोस्वामी में अकेला करते थे सब। तो भीख मांगने आना पड़ेगा। तो एक बार सनातन गोस्वामी को मदन मोहन ने सपने देखा तुम हर रोज मुझको रोटी खिलाते हो लेकिन नमक वगैरह कुछ डालो। नमक छोड़कर कैसे खाएंगे इतना सूखा सूखा रोटी। तुम सनातन गोस्वामी बोले आज तुम नमक मांगे हुए काल स्वीट राइस मांगे हुए काल दूसरा कुछ तो मैं ये करूँगा फिर मेरा महाप्रभु का आदेश ग्रंथ लेखना क्या करूँगा इतना मुझे नहीं कहते जो खिलाओगे खाओ खाओ नहीं खाओ भागे से। तो एक्चुअल टाइम कहाँ है नमक मांगे इतना वो कहाँ मिलेगा। और यहाँ से भीख मांगने कहाँ जाना पड़ेगा मथुरा जाना पड़ेगा भीख मांगने नमक मिलने के लिए। तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो कुछ दिन बाद एक व्यवसायी धंधाबाज
व्यवसायी
व्यापारी व्यापारी नमक का जहाज लेके जा रहा था इधर में जमुना नदी में, वहा स्टीमर रुक गया, नहीं चल रहा है, बहुत दिन नहीं चल रहा है। तो एक बालक आके वाला जो वो जो टीला के ऊपर, इधर में कोई शब्द नहीं, एक बोले ऊंचा जगह था वहाँ सनातन गोस्वामी ये ऊपर टीला में भजन करते थे, जहाँ देखा हम पहले। बोले वह साधु बाबा है जो उनका बहुत शक्ति है, उनको बोलो, उनको बोले का तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है कोई बोल रहा है। तो सनातन गोस्वामी गया, स्पर्श किया तो नाव चलने लगा। तो वो जो व्यवसाय बहुत खुश कर रही है, साधु तो बहुत है। तो उन्होंने बोला ठीक है ये बार बिजनेस है, जितना प्रॉफिट होगा मैं आपको एक मंदिर बना दूं मदन मोहन का। तो जब स्टीमर लेकर जाए वो देखा था नमक लेकर था, पूरा कर्पूर का जहाज है, बहुत रुपया है। तो पूरा वहाँ से उन्होंने ये बहुत बड़ा भव्य मदन मोहन के लिए मंदिर बना दिया। फिर भी उन्होंने मंदिर में नहीं आते, सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने उन भजन के लिए अलग छोटा जगह, ताकि हमारे मन में भोग प्रवृत्ति न आएगा। और फिर छोटा कुटीर में उन्होंने मृत्यु भजन करते। यह सनातन गोस्वामी का वैराग्य है। हरे कृष्ण। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की
जय।
जगत विश्व प्रभुपाद की
जय।
गौर प्रेमानंदी।